एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे देश की कहानी में उतर रहे हैं जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम उसे जानते हैं, फ्रांस।
हाँ बिल्कुल, जैसे ही फ्रांस का नाम आता है तो दिमाग में एफिल टावर, कला, इतिहास, यह सब घूमने लगता है।
सही, लेकिन आज हम इस तस्वीर के थोड़ा पीछे जाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र, अपनी पहचान आखिर बनाता कैसे है। ये सवाल आज बहुत अहम है।
और इस सफर में हमारी गाइड है इतिहासकार वैनेसा आर श्वार्ट्स। उनकी दो बहुत दिलचस्प किताबें हैं, मॉडर्न फ्रांस और मॉडर्न फ्रांस अ हिस्ट्री इन डॉक्यूमेंट्स।
इन किताबों में खास क्या है?
खास ये है कि ये हमें इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों से नहीं समझाती, ये हमें उस दौर की तस्वीरों, पोस्टरों, यहाँ तक के डिपार्टमेंट स्टोर के कैटलॉग के जरिए दिखाती हैं कि आम लोगों ने इतिहास को जिया कैसे, महसूस कैसे किया, जिसे
हाँ।
वो लाइसिटी कहते हैं।
या
आप्रवासन पर जो सवाल उठ रहे हैं,
हाँ।
वैसी बहसें तो आज पूरी दुनिया में हो रही हैं, तो शायद फ्रांस की कहानी से हमें अपनी दुनिया की उलझनों को समझने में भी कुछ मदद मिले।
तो चलिए शुरू करने से पहले लेखिका के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वैनेसा आर श्वार्ट्स,
जी,
वो दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इतिहास, कला इतिहास और फिल्म की प्रोफेसर हैं। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि एक फिल्म और कला की प्रोफेसर हमें फ्रांस के आधुनिक बनने की कहानी कैसे बता सकती हैं?
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उनका नजरिया ही अलग है। श्वार्ट्स का मानना है कि इतिहास सिर्फ संसद या जंग के मैदान में नहीं लिखा जाता,
बल्कि
हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बनता।
बिल्कुल, वो ये देखती हैं कि जब पेरिस में पहला डिपार्टमेंट स्टोर खुला तो उसने सिर्फ खरीदारी का तरीका नहीं बदला, उसने लोगों के एक दूसरे को देखने का तरीका बदल दिया। मतलब वो उस दौर के विज्ञापनों में, फिल्मों में इतिहास को ढूंढती हैं।
तो वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाती हैं कि उस दौर के लोगों को कैसा महसूस हुआ। और शायद एक अमरीकी होने के नाते वो उन चीजों को भी नोटिस कर पाती हैं जिन्हें फ्रांसीसी लोग शायद स्वाभाविक मानकर नजरअंदाज कर देते होंगे।
सही का, वो एक बाहरी व्यक्ति की पैनी नजर से देखती हैं।
तो फिर इन किताबों का निचोड़ क्या है? एक बात मुझे हमेशा से हैरान करती है, हम फ्रांस को परंपरा से जोड़ते हैं ना, पुराने महल, सदियों पुराना इतिहास,
जी,
फिर वही देश आधुनिकता और क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र कैसे बन गया? ये दोनों बातें एक साथ कैसे?
हाँ, और यही उनकी किताबों का सबसे दिलचस्प तर्क है। श्वार्ट्स कहती हैं कि आधुनिक फ्रांस का जन्म कोई शांत धीरे धीरे नहीं हुआ,
अच्छा,
बल्कि ये नाटकीय दरारों, गहरे संघर्षों और खुद को बार बार नए सिरे से गढ़ने की एक लंबी और तूफानी प्रक्रिया का नतीजा है। फ्रांस ने आधुनिकता को बस अपनाया नहीं, उसने आधुनिक होने का एक अपना, एक खास फ्रेंच तरीका इजाद किया।
और वो जो दूसरी किताब है, अ हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्स, वो इसमें कैसे मदद करती है?
वो किताब तो जैसे एक टाइम मशीन है, वो हमें सीधे उस दौर में ले जाती है। हम सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते नहीं, हम सीधे उस दौर के किसी क्रांतिकारी पैम्फलेट को पढ़ते हैं या महिलाओं के अधिकारों का घोषणा पत्र देखते हैं।
मतलब इतिहास को महसूस करते हैं।
बिल्कुल, सिर्फ जानते नहीं।
तो चलिए इस टाइम मशीन में बैठते हैं, देखते हैं कि कैसे 1789 की क्रांति के सवाल आज भी जिंदा है
और कैसे पेरिस आधुनिक जीवन की एक प्रयोगशाला बना।
तो शुरुआत होती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। हम सब ने पढ़ा है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन शॉर्ट्स हमें बताते हैं कि जैसे ही ये नारे लगे, इन पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। स्वतंत्रता पर किसके लिए, समानता लेकिन किनके बीच, ये लड़ाई उसी दिन शुरू हो गई थी।
अच्छा, इसका कोई उदाहरण है?
सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज था।
लेकिन इसमें कोई पेच था?
पेच ये था कि इस मनुष्य शब्द में महिलाएं शामिल नहीं थी।
ओह।
तो जैसे ही ये घोषणा पत्र आया, ओलंप दे गूज नाम की एक लेखिका ने इसका जवाब देते हुए महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा लिख दी। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि अगर महिलाओं को सजा दी जा सकती है तो उन्हें राजनीति में अपनी बात रखने का हक क्यों नहीं है।
वाह, मतलब सबके लिए बराबरी का जो दावा था वो पहले दिन से ही सवालों के घेरे में था।
बिल्कुल, और सिर्फ महिलाएं ही क्यों, फ्रांस की कॉलोनियों में जो गुलाम थे या जो गरीब लोग थे, उन्हें भी इन अधिकारों से बाहर रखा गया। श्वार्ट्स कहती है कि यही फ्रांस के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी उलझन है।
क्या
कि एक तरफ तो सार्वभौमिक मूल्यों का दावा और दूसरी तरफ अपने ही समाज के एक बड़े हिस्से को उन मूल्यों से बाहर रखने की हकीकत।
तो क्रांति ने ये बड़े बड़े सवाल तो खड़े कर दिए, लेकिन एक राष्ट्र बनाने का असली काम तो इसके बाद शुरू हुआ होगा।
हाँ, और वो दौर यानी 19वीं सदी बेहद दिलचस्प है। यहीं पर फ्रेंच होने का मतलब गढ़ा गया और इसका सबसे बड़ा स्टेज था पेरिस।
पेरिस का कायापलट, बैरन हॉसमान ने जो पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया था, लेकिन वो सिर्फ सड़कें चौड़ी करने का प्रोजेक्ट था क्या?
नहीं, शॉर्ट्स के मुताबिक वो से कहीं ज्यादा था। हॉसमान ने पेरिस को आधुनिकता का एक तमाशा बना दिया, एक स्पेक्टिकल ऑफ मॉडर्निटी।
तमाशा कैसे?
चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर, रोशनी से जगमगाते कैफे, ये सब सिर्फ सुविधा के लिए नहीं थे। लोग अब सड़कों पर दूसरों को देखने और खुद को दिखाने निकलते थे।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पेरिस उस जमाने का एक तरह का सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम बन गया था?
हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी उपमा है, बिल्कुल। डिपार्टमेंट स्टोर सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं थे, वो एक सामाजिक अनुभव थे। लोग वहाँ घूमने जाते थे, आधुनिक जीवन की चकाचौंध देखने जाते थे।
लेकिन इसी दौर में फ्रांस एक बहुत बड़े संकट से भी गुजरा था, है ना? ड्रेफस कांड।
हाँ, और श्वार्ट्ज इसे गणतंत्र के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट कहती हैं। अल्फ्रेड ड्रेफस, एक यहूदी सेना कप्तान जिन पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगा।
और इस एक मामले ने पूरे समाज को बांट दिया था,
दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ थी सेना, चर्च और यहूदी विरोधी लोग, जो कह रहे थे कि देश का सम्मान एक व्यक्ति के न्याय से ज्यादा जरूरी है।
और दूसरी तरफ कौन थे?
दूसरी तरफ थे गणतंत्र और मानवाधिकार के समर्थक, जैसे लेखक एमिल ज़ोला। उनका मशहूर खुला खत जक्यूज, यानी मैं आरोप लगाता हूँ, इसी दौरान लिखा गया था। ये लड़ाई फ्रांस की आत्मा के लिए थी
कि फ्रांस कैसा देश बनेगा।
हाँ, क्या वो धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव करेगा, या फिर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के अपने वादे पर कायम रहेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम आज फ्रांसीसी पहचान कहते हैं, वो कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, उसे बाकायदा बनाया गया था, डिजाइन किया गया था।
बिल्कुल, और इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सबसे बड़े टूल थे सरकारी स्कूल और अनिवार्य सेना भर्ती।
अच्छा,
स्कूलों में बच्चों को एक मानक फ्रेंच भाषा और फ्रांस का एक खास गौरवशाली इतिहास पढ़ाया गया, और सेना ने देश के अलग अलग कोनों से आए नौजवानों को एक साथ लाकर उनमें एक साझा पहचान बनाई। ये एक बहुत बड़ी और सचेत परियोजना थी।
तो ड्रेफस कांड ने गणतंत्र को तो बचा लिया, लेकिन समाज में जो दरारें थीं वो और गहरी हो गईं, और शायद इन्हीं दरारों ने 20वीं सदी में आने वाले तूफानों के लिए
बिल्कुल सही नस पकड़ी। 20वीं सदी के संकटों ने फ्रांस को अपनी पहचान पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का अनुभव तो खास तौर पर बहुत दर्दनाक था।
जर्मनी का कब्जा और फिर फ्रांस की अपनी ही सरकार का नाजियों के साथ सहयोग।
हाँ, इस अनुभव ने एकजुट फ्रांस के मिथक को, उस कहानी को चकनाचूर कर दिया। समाज बट गया था, कुछ लोग प्रतिरोध कर रहे थे, कुछ सहयोग, और ज्यादातर बस चुपचाप जी रहे थे।
और दूसरा बड़ा झटका था उपनिवेशवाद का अंत, खासकर अल्जीरियाई युद्ध। श्वार्ट्ज इसे एक फ्रांसीसी गृह युद्ध कहती हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है, अल्जीरिया तो एक कॉलोनी थी।
यहीं पर कहानी उलझ जाती है। फ्रांस अल्जीरिया को सिर्फ एक कॉलोनी नहीं बल्कि फ्रांस का ही एक हिस्सा मानता था।
एक मिनट, फ्रांस का हिस्सा जैसे भारत ब्रिटेन के लिए था, वैसा नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां 10 लाख से ज्यादा यूरोपीय बसे हुए थे, इसलिए अल्जीरिया की आजादी की लड़ाई को फ्रांस में देश के टूटने की तरह देखा गया। इसने सेना और सरकार को आमने सामने खड़ा कर दिया था। गणतंत्र लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था।
तब तो ये संघर्ष बिल्कुल एक गृह युद्ध जैसा रहा होगा। इसका असर तो आज भी महसूस होता होगा। थी वो सिर्फ छात्रों का हंगामा तो नहीं था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। श्वार्ट्ज उसे एक राजनीतिक विद्रोह से ज्यादा एक सांस्कृतिक क्रांति के रूप में देखती हैं। छात्र और मजदूर सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं थे, वो पूरे सिस्टम के खिलाफ थे। उपभोक्तावाद, पुरानी परंपराएं, आधुनिक जीवन की बोरियत।
उनके नारे भी तो बहुत मशहूर हुए थे।
हाँ, जैसे यथार्थवादी बनो, असंभव की मांग करो। इस विद्रोह ने फ्रांसीसी समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने व्यक्तिगत आजादी पर एक नई बहस छेड़ दी,
और इसी बहस की एक गूंज हमें आज के सबसे बड़े विवाद में सुनाई देती है, हेडस्कार्फ विवाद।
बिल्कुल, स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी।
ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया?
क्योंकि ये फ्रांस की पहचान से जुड़े हर संवेदनशील तार को छेड़ता है। ये दो मौलिक अधिकारों का टकराव है। एक तरफ लाइसिटी का सिद्धांत, जो कहता है कि सार्वजनिक स्थान, खासकर स्कूल, धार्मिक प्रतीकों से मुक्त होने चाहिए।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
तो मतलब 200 साल बाद भी फ्रांस असल में उन्हीं सवालों से जूझ रहा है जो क्रांति ने उठाए थे। नागरिक कौन है, राष्ट्र का क्या मतलब है?
बिल्कुल, इतिहास कभी खत्म नहीं होता, बस उसके रूप बदल जाते हैं।
इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े विचार क्या निकल कर आते हैं? एक बात जो मुझे समझ आई वो है रचनात्मक अनुकूलन। फ्रांस ने आग बंद करके आधुनिकता की नकल नहीं की।
सही।
हर चीज को अपना एक फ्रेंच टच दे दिया। जैसे अमेरिकी जैज संगीत जब फ्रांस पहुंचा तो वो जिप्सी जैज बन गया।
दूसरा विचार जो थोड़ा परेशान करने वाला है वो है सार्वभौमिकता का विरोधाभास। दुनिया को बराबरी का पाठ पढ़ाना, लेकिन अपने ही घर में महिलाओं और औपनिवेशिक लोगों को उन अधिकारों से वंचित रखना, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना करना फ्रांस के लिए आज भी मुश्किल है।
और तीसरा विचार जो मुझे बहुत पसंद आया वो है संस्कृति और तमाशे की भूमिका।
हाँ, ये कि आधुनिकता का अनुभव सिर्फ फैक्ट्रियों में नहीं, वो डिपार्टमेंट स्टोर में घूमने और सिनेमा देखने में हुआ।
और आखिरी और सबसे जरूरी बात कि फ्रेंचनेस कोई आसमान से उतरी चीज नहीं है, इसे बनाया गया है, गढ़ा गया है।
बिल्कुल, और ये काम आज भी चल रहा है।
इस चर्चा से कोई एक ऐसा विचार है जो आपके जहन में अटक गया हो?
मेरे लिए वो विचार ये है कि आधुनिक फ्रांसीसी पहचान खोजी नहीं गई थी, बल्कि निर्मित की गई थी। ये याद दिलाता है कि पहचान हमेशा कुछ चुनावों का नतीजा होती है। हम क्या याद रखना चुनते हैं और क्या भूलना।
समाप्त नहीं हुई, कई मायनों में ये अभी तक समाप्त नहीं हुई है। ये दिखाता है कि इतिहास बीती हुई चीज नहीं है, पुराने संघर्ष नए कपड़ों में हमारे सामने आते रहते हैं।
तो अगर हम इस चर्चा से कुछ सीखना चाहें तो वो क्या होगा?
मुझे लगता है पहली सीख है आलोचनात्मक सोच। आधिकारिक कहानियों पर, सरकारी इतिहास पर सवाल कैसे उठाएं? आज के फेक न्यूज के जमाने में ये बहुत जरूरी है।
दूसरी सीख ये है कि फ्रांस में चल रही बहसें सिर्फ फ्रांस की नहीं है। पहचान, धर्मनिरपेक्षता, आप्रवासन, ये मुद्दे आज भारत से लेकर अमेरिका तक हर जगह हैं।
सही बात।
तो फ्रांस के अनुभव को समझना हमें इन वैश्विक बहसों की गहराई को समझने में मदद करता है।
और आखिरी बात शायद ये कि कोई भी संस्कृति न तो पूरी तरह से बंद होती है न ही पूरी तरह से खुली। हर समाज बाहरी प्रभावों को अपनी जरूरतों और इतिहास के हिसाब से बदलता और अपनाता है। आज की बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मैं लेकर जा रही हूँ वो ये है कि किसी भी देश की पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली बहस है। और फ्रांस का उदाहरण दिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ एक रचनात्मक तनाव में रहते हैं।
और मेरे लिए सबसे स्थायी अंतर्दृष्टि यह है कि इतिहास हर जगह है, सिर्फ बड़े बड़ी इमारतों और किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर की चीजों में, एक पुराने पोस्टर में, एक गाने में। इन रोजमर्रा के दस्तावेजों को पढ़ना सीखने से हमें अतीत तक एक ज्यादा सीधी पहुंच मिलती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।